नमस्कार। प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक डॉट नेट के इस विषय में हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। आज हम विजुअल स्टूडियो का परिचय प्राप्त करेंगे। विजुअल स्टूडियो क्या है? यह एक बड़ा सिनेरियो है, कवरिंग है, जिसके अंदर विजुअल बेसिक डॉट नेट एक भाषा के रूप में हम प्रयोग करने वाले हैं। मूलतः एक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को, ASP.NET एप्लीकेशंस को, XML वेब सर्विसेज, वेब सेवाएं तथा मोबाइल एप्लीकेशंस को विकसित करने हेतु विकास उपकरणों का एक संपूर्ण सेट विजुअल बेसिक है, विजुअल स्टूडियो है। इसके अंदर कई भाषाएं हैं, जैसे विजुअल बेसिक, विजुअल सी शार्प, जे शार्प। इन सब को इकट्ठा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के रूप में विजुअल स्टूडियो कार्य प्रदान करता है। इससे आप बहुत तेज गति से रैपिडली एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी भाषाएं .NET फ्रेमवर्क की फंक्शनलिटी का, उसकी शक्तियों का उपयोग करती है। .NET फ्रेमवर्क हम देख चुके हैं, यह एक आकार या सपोर्ट देने वाली ढांचे के रूप में, बैकग्राउंड के रूप में कार्य करती है, जो कि एक सिक्योर मल्टीलिंगुअल बहुभाषीय विकास प्लेटफॉर्म के रूप में है और रैपिड मॉडल ड्रिवन प्रोग्रामिंग, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के रूप में जिसकी एक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर कैसे कार्य होता है विजुअल स्टूडियो में, ये अलग अलग भाषाओं में प्रोग्रामर अपनी मनपसंद की भाषाओं का इस्तेमाल करके अलग अलग सोर्स कोड के हिस्से, या कहे कि फंक्शंस, प्रोसीजर्स, इनको विकसित कर सकता है, लिख सकता है। फिर जब वो इन सारे अलग अलग भाषाओं में विकसित किए हुए सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, उस वक्त विजुअल स्टूडियो उन सब को एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। यह इंटरमीडिएट लैंग्वेज में सब आकर सबको ट्रांसलेट करके उसके बाद वहां से सब आपस में जो एक दूसरे के फंक्शंस को कॉल किया गया हो, रेफरेंसेस हो, लाइब्रेरी के कॉल्स हो, कॉमन क्लासेस के कॉल्स हो, उन सब को इकट्ठा करके तत्पश्चात फिर उनको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। इसमें एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का भी इस्तेमाल होता है, जो कि मुख्य रूप से चार कार्य करती है। गार्बेज कलेक्शन, यानी कि जो अनवांटेड, अनचाहे कचरा जो इकट्ठा हो गया है उनको संकलित करना, कोड वेरिफिकेशन यानी कि कोड का परीक्षण करना, सोर्स कोड का परीक्षण करना, कोड एक्सेस सिक्योरिटी यानी कि कोड के एक्सेस के लिए सुरक्षा प्रदान करना, और इंटरमीडिएट भाषा से नेटिव लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में ट्रांसलेशन करना। ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम भी उसी का हिस्सा है। अलग अलग भाषाओं से आया हुआ कोड कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बाद के अंदर ट्रांसलेट होकर उसके बाद एक मशीन कोड के रूप में ट्रांसलेट होता है, जो कि एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, हार्डवेयर जिसको सीधा सीधा समझ सकता है। इसके अंदर एक असेंबलीज का इस्तेमाल होता है। जब आप .NET फ्रेमवर्क में सपोर्टेड किसी भी भाषा में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वह सोर्स कोड कंपाइलर के द्वारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज में परिवर्तित हो गया। उसके बाद कंपाइलर कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में बदलने के क्रम में मेटा डाटा भी बनाता है। यह मेटा डाटा प्रोग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसे क्लास, इंटरफेस, प्रोग्राम में उपयोग किए गए कंपोनेंट्स का संस्करण इत्यादि रखता है, और ये दोनों ही इंटरमीडिएट लैंग्वेज तथा मेटा डाटा असेंबली में लिंक होते हैं। इस फ्रेमवर्क में विकसित सभी एप्लीकेशन असेंबली से मिलकर ही बने होते हैं। इसके बाद अगला जो परिचय आता है वो आता है क्लास लाइब्रेरी का, जो कि .NET फ्रेमवर्क में बार बार उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न क्लासेस का एक संकलन होता है, जो कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्लास ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड होता है, ऊप्स के ऊपर बेस्ड होता है, और इसका उपयोग करके आप विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस विकसित कर सकते हैं, जैसे डॉस पर आधारित कंसोल एप्लीकेशन, या विंडोज GUI एप्लीकेशन, ASP.NET पर आधारित एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन एप्लीकेशंस, विंडोज सर्विसेज, ऐसे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस का विकास हम कर सकते हैं। ऐसा करने से .NET फ्रेमवर्क क्लास का उपयोग करना ही आसान नहीं हो जाता, बल्कि .NET फ्रेमवर्क के नए फीचर्स को कम समय लगता है। आइए हम प्रैक्टिकली विजुअल बेसिक पर कार्य करने का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के पूर्व अपने कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल किया जाना होता है। तो हम विजुअल बेसिक .NET पे कार्य करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत करेंगे विजुअल स्टूडियो के सॉफ्टवेयर को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित है और एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसको मार्केट से खरीदना होता है। तो वो सॉफ्टवेयर को लेकर आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें, या अपने किसी सीनियर की मदद लेकर उसको इंस्टॉल करवा लें। तत्पश्चात आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू में जाकर, जैसा कि आप जानते हैं, वहां जाके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 या 2008 या जिस भी वर्षन को आपने इंस्टॉल किया है उसको चूज करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग 2005 पर बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 को हमने चूज किया स्टार्ट मेनू के बाद। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 अपने कंप्यूटर पर रन होने लगता है और स्क्रीन पर हम देखते हैं एक डिस्प्ले आया है। बेहतर होगा कि आप कंप्यूटर पर रन करते करते इस चर्चा को सुनते रहे, ताकि दोनों कार्य सहजता से आप कर पाए। तो यदि आपने रन कर लिया है तो बेहतर, वरना आप इस क्षण इस ऑडियो को पॉज कर सकते हैं। जब आप पॉज करके लौटेंगे, जब आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप पुनः अपने ऑडियो को रिप्ले कर सकते हैं, ताकि जो चर्चा हम कर रहे हैं उस चर्चा के साथ आप कंप्यूटर पे कार्य भी कर पाए। तो अब आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जिसके अंदर मेन मेनू में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, विंडोज, कम्युनिटी एवं हेल्प। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप फाइल को क्लिक करेंगे। फाइल को क्लिक करते ही आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिल गया है। इस मेनू में से हम चूज करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। अब नया प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाह रहे हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद आप देखते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है स्क्रीन पर, जिसमें कि अलग-अलग प्रोजेक्ट के टाइप्स और टेम्पलेट्स दर्शित किए गए हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद का प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। शुरुआत के लिए हम क्या चूज करेंगे? विजुअल बेसिक चूज करते हैं, और विजुअल बेसिक के अंदर अलग-अलग ऑप्शंस में से एक विंडोज का एप्लीकेशन हम चूज कर लेते हैं। तो विजुअल बेसिक में विंडोज। विंडोज करने के बाद अलग-अलग टेम्पलेट्स आपको दाहिनी ओर के विंडो में
दिखाई देते हैं इस डायलॉग बॉक्स में। इसमें अलग अलग चुनाव है टेम्पलेट्स का। तो जैसे इसमें विंडोज एप्लीकेशन टू स्टार्ट विद हम चूज कर सकते हैं। इनके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस है वो आप देख रहे हैं, क्लास लाइब्रेरी बना सकते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे, जिसमें हम अपने क्लास विकसित करके उनकी एक लाइब्रेरी का विकास कर सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन, ये भी एक सरल सा एप्लीकेशन है जो कि डॉस बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के कार्य में आता है। अगला है विंडोज कंट्रोल लाइब्रेरी, जो कि हम अपने कंट्रोल टूल्स को विकसित करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा और अध्ययन करने के बाद देख पाएंगे। उसके बाद है वेब कंट्रोल लाइब्रेरी, विंडोज सर्विसेज, एमटी प्रोजेक्ट, क्रिस्टल रिपोर्ट एप्लीकेशंस आदि। तो टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए हम इनमें से विंडोज एप्लीकेशंस को क्लिक करते हैं तो, और नीचे के टेक्स्ट बॉक्स में वो एक एप्लीकेशन का नाम बाय डिफॉल्ट उसने बनाया है विंडोज एप्लीकेशन 1। आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं, और अभी की चर्चा में हम इसको यही रहने देते हैं विंडोज एप्लीकेशन 1। और जैसा कि आप जानते हैं, इतना सिलेक्ट करने के बाद हम ओके को क्लिक करते हैं। यदि आपने ओके को क्लिक कर दिया है तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको एक प्यारा सा एनवायरनमेंट खुल गया है, जिसके अंदर मध्य के भाग में form1.vb और ब्रैकेट में डिजाइन के रूप में एक विंडो खुल गई है, एक टैब खुला है। दूसरा टैब है स्टार्ट पेज, तीसरा है ऑब्जेक्ट ब्राउजर, अभी उनको नहीं खोलेंगे। फिलहाल के लिए form1.vb के रूप में इस टैब में एक विंडो खुली है जिस पर एक फॉर्म बना हुआ मिल गया है। और बाई ओर टूल बॉक्स के रूप में एक दूसरी विंडो है जिसमें कि बहुत सारे टूल्स की लिस्ट उपलब्ध है। यह टूल्स क्या है? यह टूल्स जैसे किसी भी कारीगर को कार्य करने के लिए औजार उसके शक्तिशाली हो तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा, ज्यादा गति से काम कर पाएगा। तो यह जो टूल बॉक्स है यह दर्शाता है कि अभी विजुअल बेसिक डॉट नेट के इस संस्करण में आपके पास कौन से टूल्स औजार उपलब्ध है जो आपकी प्रोग्रामिंग को गति शक्ति प्रदान कर सकते हैं, आपको अलग अलग फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। यह जो फॉर्म वन है यह फॉर्म डिजाइनर कहलाता है। बेसिकली फॉर्म डिजाइनर पर हम एक यूजर इंटरफेस का निर्माण कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन का वह भाग होता है जो कि यूजर को दिखाई देता है, जिसका प्रयोग करके यूजर अपने एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, यानी कि अपने एप्लीकेशन को इनपुट दे सकता है या आउटपुट देख सकता है। तो यह एक फ्रंट एंड की तरह कार्य करता है। यहां एक चीज और समझ लेते हैं कि हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक है यूजर। यूजर वो व्यक्ति है जो डेवलप किए हुए प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को उपयोग करने वाला है, उपयोगकर्ता। यूजर वह व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जानकारी रखता हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के रूप में आप स्वयं कार्य कर रहे हैं। प्रोग्रामर वह व्यक्ति है जो यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखकर उचित शक्तिशाली प्रोग्राम का विकास करता है। तो आप एक प्रोग्रामर के रूप में हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निकलिटीज का जानकार है, जानता है कंप्यूटर को और किस ढंग से उसको कार्य करना है।
तो यूजर को ध्यान में रखकर ही कोई भी प्रोग्राम विकसित किया जाने वाला है। तो यहां पर हम देख रहे हैं फॉर्म वन, जो कि यूजर को दिखाई देने वाला है जब इस प्रोग्राम को यूजर रन करेगा। जैसा कि पहले बताया, विजुअल स्टूडियो की खूबसूरती, उसकी सहजता और सरलता ही यह है कि बहुत शक्तिशाली यूजर इंटरफेस अत्यधिक सरलता और सहजता से विकसित किए जा सकते हैं। शुरुआत होती है फॉर्म से, जो कि यूजर को दिखाई देने वाला है। कैसे करेंगे? विधि बहुत आसान है। हम इस फॉर्म पर अलग अलग कंट्रोल्स या टूल्स या औजारों को पेस्ट करेंगे, प्रॉपरली प्लेस करेंगे, जहां जिस रूप में हम चाहते हैं, जिस रंग में, जिस शेप में, जिस स्थान पर विभिन्न टूल्स हम दिखाना चाहते हैं, उन स्थानों पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया के माध्यम से उन टूल्स को पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे या प्लेस करेंगे, रखेंगे। शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए टूल बॉक्स वाले विंडो में क्लिक करते हैं और वहां पर कॉमन कंट्रोल्स। अब हम देख रहे हैं कि यह विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक बार में सारी चीजों को स्क्रीन पर दिखाना करीब करीब असंभव है। ऐसा करने से उनका साइज इतना छोटा हो जाएगा कि हमें अलग अलग टूल्स या अलग अलग चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। इसलिए अलग अलग विंडोज कोलैप्स फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग चीजें टैब के रूप में स्टोर्ड होती है, जिनको आपको खोलना होता है। जैसे टूल बॉक्स में आप देख रहे हैं ऑल विंडोज फॉर्म्स है, कॉमन कंट्रोल्स है, कंटेनर्स है, अलग अलग क्लासिफाई किए हुए टूल्स है। तो इनमें से अगर हम कॉमन कंट्रोल्स को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कॉमन कंट्रोल्स एक्सपांड हो जाता है, उसके टूल्स खुल करके लिस्ट के रूप में दिखाई देने लगे हैं। यदि आपको इस वक्त टूल बॉक्स पैनल उपलब्ध नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो संभव है कि आपके सिस्टम में टूल बॉक्स को देखने के लिए आपको ऊपर के मेनू आइटम व्यू को क्लिक करना होगा, और व्यू को क्लिक करने के बाद आप वहां पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें से टूल बॉक्स को क्लिक करेंगे। आप टूल बॉक्स जब आप क्लिक करेंगे तो आपने उसके दाहिनी ओर कंट्रोल अल्ट एक्स, जो कि उसका शॉर्ट कमांड कमांड है, वो लिखा हुआ पढ़ लिया है। तो इसके बाद जब भी आप टूल बॉक्स को देखना चाहते हैं, आप कंट्रोल अल्ट एक्स एक साथ दबा सकते हैं या व्यू में जाके टूल बॉक्स को चयनित कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो अब आपका टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है। यदि आप टूल बॉक्स में सही कंट्रोल को ढूंढने में डिफिकल्टी, कठिनाई का एहसास या महसूस कर रहे हैं, तो टूल बॉक्स पर दाएं क्लिक करके सॉर्ट आइटम्स अल्फाबेटिकली भी चूज कर सकते हैं। ऐसा करने से सारे आइटम्स अल्फाबेटिक रूप में, सॉर्ट रूप में आपको दिखाई दे जाएंगे। अब आप इनमें से फिलहाल के लिए कॉमन कंट्रोल्स को क्लिक करें, ताकि आपको ज़्यादातर कॉमनली यूज किए जाने वाले टूल्स एक साथ एक लिस्ट के रूप में दिखाई दे जाए। इन टूल्स में आप देख रहे हैं अलग अलग टूल्स है, पॉइंटर, बटन, चेकबॉक्स आदि आदि। हम शनै शनै विभिन्न टूल से परिचय प्राप्त करेंगे। अभी के लिए हम इनमें से बटन वाला टूल
चूज कर सक करते हैं, यानी कि उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही बटन वाले को क्लिक करते हैं और उसके बाद फॉर्म पर जाते हैं, माउस को कर्सर को फॉर्म पर, फॉर्म वन पर लेकर जाइए, वहां पर आपको एक ड्रैग डाउन यानी कि क्लिक करके ड्रैग करके जब आप माउस को छोड़ेंगे बाय बटन को, तो आप देखेंगे कि फॉर्म वन पर एक बटन वन के नाम से टूल का निर्माण हो चुका है। इस टूल को आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटा या बड़ा ड्रैग करके कर सकते हैं, या इसको सिलेक्ट करके माउस के माध्यम से उठाकर किसी और स्थान पर प्लेस कर सकते हैं। साधारणतः सारे टूल्स को आप रिसाइज कर सकते हैं सिर्फ लेबल को छोड़कर, जब तक कि उसके ऑटो साइज को फॉल्स नहीं किया जाए। अच्छा, ये ऑटो साइज और सब चीजें क्या है, अब इन पर बात करते हैं। आप अपने टूल्स को पेस्ट कर दिए हैं लेबल कमांड बटन को, बटन वन को, जिसे कि कमांड बटन भी कहा जाता है। मूलतः यह एक ऐसा टूल है जो यूजर के द्वारा रन टाइम में कोई कमांड देने के कार्य में आता है। अब यहां दो शब्दों को समझना आवश्यक है। रन टाइम वो समय है जब यूजर प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को रन करेगा। दूसरा शब्द है डिजाइन टाइम। यह वो समय है जब आप यानी कि प्रोग्रामर उस एप्लीकेशन को विकसित या डिजाइन कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कमांड बटन, इस जैसे कि बटन वन है, यह एक ऐसा टूल है जो रन टाइम में यूजर के द्वारा कमांड को रन करने के कार्य में आने वाला है। तो आपने कमांड बटन को एक रूप यहां पर पेस्ट किया। अब इस कमांड बटन अभी फिलहाल सिलेक्टेड है, यानी कि एक ही बटन है अभी, तो आप देख रहे हैं कि यह हाइलाइटेड है, यह सिलेक्टेड है। इस वक्त इस कमांड बटन की कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है जो विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफॉल्ट बनाकर यहां इसे प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप जानते हैं, विजुअल बेसिक यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स है। अतः यहां पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स किसी क्लास के माध्यम से डिराइव किए जाते हैं। एक क्लास होती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं, और उसके साथ कुछ मेथड्स यानी कि प्रोसीजर्स और फंक्शंस अटैच्ड होते हैं। उस क्लास से कोई भी ऑब्जेक्ट को डिराइव करना होता है। जैसे कि कमांड बटन को एक क्लास के माध्यम से डिराइव करके हमने बटन वन नाम का एक ऑब्जेक्ट फॉर्म वन पर पेस्ट कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। अब स्क्रीन के कंप्यूटर मॉनिटर के दाहिनी और नीचे की ओर प्रॉपर्टीज की एक विंडो आपको दिखाई देगी। यदि नहीं दिखाई दे रही है तो आप उसको खोलने के लिए व्यू में जाकर प्रॉपर्टीज विंडो को क्लिक कर सकते हैं या F4 शॉर्टकट की को दबा सकते हैं। ऐसा करने के उपरांत निश्चित ही आपको प्रॉपर्टीज की विंडो दिखाई दे गई है। यह प्रॉपर्टीज की विंडो हाल फिलहाल में जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दर्शा रही है उसका नाम प्रॉपर्टीज विंडो में टॉप पर लिखा हुआ है, जो इस समय बटन वन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यह बटन वन इस वक्त जिस क्लास से डिराइव किया गया है उसका नाम उसके पास लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि इस वक्त सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट बटन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यदि और इसके दाहिनी ओर एक एरो है जो कि लिस्ट बॉक्स का ओपनर है, उसको यदि आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ और कंट्रोल्स दिखाई देंगे, जैसे कि फॉर्म वन। यदि आप फॉर्म वन को चूज करते हैं तो प्रॉपर्टीज फॉर्म वन की आ जाएगी। फिलहाल के लिए हम बटन वन को ही चूज करें तो हम देखेंगे कि बटन वन हाइलाइटेड है और जो प्रॉपर्टीज की विंडो में निचला हिस्सा है उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जिनको कुछ वैल्यूज असाइन की गई है बाय डिफॉल्ट अपने आप सिस्टम के द्वारा। इनमें से जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग यहां पर है। शुरुआत के लिए अब ये प्रॉपर्टीज 50 हो सकती है, यह निर्भर करता है उस टूल पर, उस कंट्रोल पर जिसकी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं। अब इन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज खाली या ब्लैंक भी है और कुछ में कुछ वैल्यूज असाइंड भी है। जैसे इनमें से अब एक प्रॉपर्टी जो कि नेम के रूप में आप देख रहे हैं उसके सामने लिखा है बटन वन। यह बटन वन प्रॉपर्टी जो है इस ऑब्जेक्ट का, इस टूल का बनाया गया नाम है, वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम है। अब आप अगर इसमें नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन में जाएंगे तो आपको नीचे जाने के बाद, काफी नीचे जाने के बाद टेक्स्ट नाम की एक प्रॉपर्टी दिखाई देगी। यह टेक्स्ट के सामने, इस टेक्स्ट के सामने भी बटन वन ही लिखा हुआ है। यह वो प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट बॉक्स पर दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है। बाय डिफॉल्ट इसका भी नाम, इसको भी वैल्यू जो दी गई है बटन वन ही दी गई है। अगर हम यहां पर कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या करोगे? बटन वन पे क्लिक करो, उसको डिलीट करो और यहां पर कोई दूसरी वैल्यू लिखो जो कि रन टाइम में दिखाई दे। ऐसा संकेत वहां आपको लिखना है जिससे यूजर को पता चले कि यहां क्लिक करने से क्या कार्य होने वाला है। उदाहरण के लिए हम यहां पर लिखते हैं एंड, ई एनडी। जैसे ही हमने ये लिखा और वहां से कर्सर को हटाया यानी कहीं और क्लिक किया तो वहां टेक्स्ट की प्रॉपर्टी एंड के रूप में लिख दी जाती है। और अब आप नजर डालें अपने फॉर्म वन पर तो आप देखेंगे उस कमांड बटन पर जहां पहले बटन वन लिखा था अब वहां एंड लिखा हुआ आएगा। यस, ऐसे आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके उनको अलग अलग रूपों में परिलक्षित कर सकते हो। ऊपर आते हैं इसी प्रॉपर्टीज विंडो में कलर सेट करते हैं। फोर कलर पे क्लिक करें, फोर कलर पे क्लिक करके आपको एक स्क्रीन मिलेगा जिस पर कई सारे कलर्स दिखाई देंगे। उसमें से अगर कस्टम को आप क्लिक करोगे, कस्टम टैब को क्लिक करोगे तो आपको रंग चूज करने का पैलेट जैसा दिखाई देने वाला है वो दिखाई दे जाएगा। उनमें से आप किसी अपने मनपसंद रंग को, से रेड को आपने चूज कर लीजिए तो आपको एंड का जो लिखा था वो लाल रंग में हो जाएगा। देखे करके इसके बाद चलो बैक कलर को क्लिक करो, फिर से कस्टम में जाओ और दूसरा कोई रंग वहां पे चूज करो, से येलो। और तत्क्षण आप देखोगे कि कमांड बटन येलो रंग का हो गया है। अब हमने देखा कि कैसे हमने एक कंट्रोल को यहां पेस्ट किया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिजाइन टाइम में सेट की या चेंज की। अब हम एक बहुत प्रारंभिक सोर्स कोड लिखते हैं, कमांड लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं। ऐसा प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं कि जब रन टाइम में यूजर इस कमांड बटन को क्लिक करे तो प्रोग्राम खत्म हो जाए। इस या किसी भी दूसरे सोर्स कोड को लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस कमांड बटन को क्लिक करना है और उसके बाद वहां डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि डबल क्लिक करते ही आपको एक सोर्स कोड की विंडो खुल जाएगी। करके देखिए, एंड नाम का जो कमांड बटन है उस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करते ही आप देख रहे हो एक सोर्स कोड की विंडो खुल गई है जिसमें उसका फॉर्मेट बना बनाया तैयार रूप में आपको मिला है, जिसमें लिखा है पब्लिक क्लास फॉर्म वन। उसके बाद यह जो है फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर एक सब प्रोसीजर बनी हुई है जिसमें लिखा है प्राइवेट सब बटन वन अंडरस्कोर क्लिक, और ब्रैकेट में पैरामीटर्स अपने आप बने बनाए आ गए हैं। और उसके बाद उसका पूरा फॉर्मेट बना बनाया मिला है जहां आगे लिखा है हैंडल्स बटन वन डॉट क्लिक। इसका अर्थ है कि यह वो प्रोसीजर है जो कि बटन वन। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की थी, बटन वन से उसको चेंज किया था एंड के रूप में, लेकिन उस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है, उसका जो वेरिएबल नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है, उसको हमने चेंज नहीं किया था प्रॉपर्टी में। इसलिए यहां पर बटन वन अंडरस्कोर क्लिक ही लिखा हुआ आ रहा है। यदि हम उसके नाम को भी चेंज कर देते तो यहां लिखा आता सब बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। अब यहां दूसरा प्रश्न है कि अंडरस्कोर क्लिक ऐसा क्यों आया? क्योंकि इस कमांड का, इस टूल का जो डिफॉल्ट जो सोर्स कोड है वह क्लिक इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यही आप देख रहे हैं, इस विंडो के ऊपर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहां क्लिक लिखा हुआ है। यदि आप उसके एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको सारे इवेंट्स की लिस्ट दिखाई देने लगेगी जो कि इस कमांड के साथ अटैच सोर्स कोड के रूप में किए जा सकते हैं। ये 500 हो सकते हैं। इन सारी लिस्ट में आप देख रहे हैं क्लिक नाम का जो इवेंट है वह बोल्ड रूप में दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ है कि यह एक डिफॉल्ट इवेंट है। इस पर हम पुनः लौट कर बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, हम इस प्राइवेट सब बटन वन अंडरस्कोर क्लिक के नीचे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं जिसका नाम है एंड। सिर्फ हम लिखते हैं ENDE एंड, और इसको हम अब प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए आप फाइल मेनू में जाइए और फाइल मेनू में जाकर वहां पर सेव ऑल के रूप में इस प्रोजेक्ट को सेव करें। अब ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। अब इसको हमको रन करना है। रन करने के कई तरीके हैं। पहला, हम F5 की दबा दें, F5, या दूसरा ऊपर के मेन मेनू में डिबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग दबाएं, या तीसरा टूल बार जो है, जो मेन मेनू के नीचे है, वहां एक एरो की दिखाई दे रही है जो कि शॉर्टकट है रन करने के लिए, डिबग स्टार्ट डिबग करने के लिए, उसको क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका प्रोजेक्ट कंपाइल होने लगेगा। यदि कहीं कोई सिंटेक्स एरर होगी तो वो आपको दर्शाई जाएगी। संभवतः इस छोटे से स्टेटमेंट में कहीं कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट कंपाइल लिंक होकर आपको रन फॉर्म में दिखाई देने लगेगा, जो कि इस वक्त आप देखेंगे स्क्रीन पर फॉर्म वन नाम का एक फॉर्म खुल गया है और उस फॉर्म वन पर एंड नाम का एक कमांड बटन है। इस कमांड बटन पर इस एंड को यदि हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो वो जाएगा उस सोर्स कोड पे जो लिखा हुआ है एंड, और एंड का अर्थ आप जानते हैं खत्म करो, तो वो जो एंड स्टेटमेंट लिखा है वो रन होगा और आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि पुनः डिजाइन मोड में आ जाएगा। यदि आप इसको कर पाए तो आप निश्चय ही बधाई के पात्र है, आपने अपना पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर लिया है, वर्शन वन आपने रन कर लिया है। अब पुनः इस पर एक छोटी सी तब्दीली करते हैं। ऐसा करने के लिए आपके जो यहाँ पर जो अलग अलग टैब्स है इसमें से form1.vb डिजाइन मोड में आ जाइए। आप पुनः देखेंगे डिजाइन वन आपको दिख रहा है जो आपने बनाया था। अब आप क्या करें, आप लेबल बॉक्स को टूल बॉक्स में जाकर लेबल को क्लिक करें और एंड के ऊपर एक लेबल बॉक्स का निर्माण करें, यानी कि लेबल को क्लिक करके फॉर्म वन पे आइए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए। तत्पश्चात F4 दबाकर उसकी प्रॉपर्टीज में जो टेक्स्ट है उसको जहां अभी बाय डिफॉल्ट लेबल वन लिखा है वहां पर लिख दीजिए वेलकम, और चाहे तो अपना स्वयं का नाम लिख सकते हैं, वेलकम डियर आपका नाम, बस ऐसा आपने कर लिया। अब ये थोड़ा और सुंदर दिखे ऐसा यदि आप चाहते हो तो आप और कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कर लीजिए। प्रॉपर्टीज के नाम देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि उस प्रॉपर्टी का क्या उद्देश्य होगा। बॉर्डर स्टाइल, यदि आप बॉर्डर स्टाइल को चूज करेंगे तो बॉर्डर बदल जाएगी। बैक कलर को चूज करेंगे जैसा पहले किया था तो बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा। उसके बाद और नीचे आते हैं, फोर कलर भी हम पहले चेंज, आप जानते हैं कैसे चेंज करना, उसको चेंज कर लीजिए, अपनी मनपसंद का कलर डाल दीजिए। तत्पश्चात इमेज, यदि आप चाहते हो तो क्लिक करके वहाँ पर कोई इमेज लोड कर सकते हैं, चित्र लोड कर सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए नहीं। और इतना कार्य आपने कर लिया, अब पुनः रन करें प्रोग्राम को और आप देखोगे स्क्रीन पर आपको वेलकम डियर और आपका नाम लिखा हुआ मैसेज आया और उसके नीचे एंड आया। यदि इस वेलकम डियर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने उससे संबंधित कोई भी सोर्स कोड नहीं लिखा है। अब आप एंड को क्लिक करें, प्रोग्राम खत्म हुआ, वर्शन 2 का प्रोग्राम आपने कर लिया। अब पुनः आइए डिजाइन मोड पे, वेलकम के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए। एक एक कदम चलना प्रोग्रामिंग सीखने की सहज तरकीब है जिससे आप अपना कार्य सहजता से कर सकते हैं। अब आप टेक्स्ट बॉक्स को बनाइए, टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी इनपुट दे सकेंगे, रन करिए। अब आपने रन किया, टेक्स्ट बॉक्स को आप कोई भी इनपुट यहाँ डाल सकेंगे, नाम टाइप भी कर सकेंगे, लेकिन अभी हमने कहीं कोई सोर्स कोड ऐसा नहीं लिखा कि इस नाम का प्रयोग कैसे करना है, तो इसका प्रयोग करने के लिए हम अगले वर्शन पर आएंगे। फिलहाल के लिए आप इन तीन टूल्स के को सुंदरता से सजाइए, पुनः रन करके देखें, फिर लौट कर आए फॉर्म वन डिजाइन में और फॉर्म वन की को पर क्लिक करके, किसी भी टूल पर क्लिक ना करें, फॉर्म वन पर क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाए और उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाकर अब हम कुछ कार्य करते हैं इसको और सुंदर बनाने के लिए। चलिए हम ये करते हैं कि कोई प्रॉपर्टीज को देखिए राइट साइड में, अलग अलग प्रॉपर्टीज को, किस प्रॉपर्टी को बदलने का आपको मन हो रहा है, अंदाज लगाइए और उसको देखकर उस प्रॉपर्टी को चेंज करिए। जैसे उसका फोर कलर, बैक कलर आदि, जो भी आप प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहे उनको चेंज करके पुनः सेव करें और अपने प्रोग्राम को पुनः रन करके देखें। आज के लिए इतना पर्याप्त है, हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया है। अगली चर्चा में हम देखेंगे कैसे इस प्रोग्राम को और ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा बनाया जाए।